नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा, हाल ही में गेहूं और चावल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है। सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन गेहूं खुला बाजार बिक्री योजना के तहत बेचने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ये कुछ महीने पहले घोषित खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री के अलावा है। चोपड़ा ने कहा कि अब तक 7 लाख टन गेहूं OMSS के तहत ई नीलामी के जरिए बेचा गया है। चावल की बिक्री बहुत कम रही है। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज ने बुधवार को अपने प्रीमियम SUV GLC का नया संस्करण पेश किया। इसकी शोरूम कीमत 73.5 लाख रुपए है। कंपनी ने बयान में कहा कि दूसरी पीढ़ी की GLC के पेट्रोल संस्करण की कीमत 73.5 लाख रुपए तो डीजल संस्करण की कीमत 74.5 लाख रुपए है। बयान के अनुसार इस मॉडल के लिए अब तक 1500 बुकिंग मिल चुकी है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के उपाध्यक्ष लॉन्स बेनेट ने PTI भाषण से कहा, कंपनी चालू वर्ष में बिक्री वृद्धि को दहाई अंक में लाने का लक्ष्य रख रही है। इस साल कंपनी की कुल बिक्री में GLC का हिस्सा 15% रहने की उम्मीद है। वीडियो साझा करने की सुविधा देने वाला मंच YouTube ने बुधवार को कहा कि प्रौद्योगिकी विकसित होने और AI संचालित उपकरणों के आने के साथ मंचों और समाज के लिए गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाना महत्वपूर्ण है। उसने ये भी कहा कि उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने और वास्तविक दुनिया को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तकनीकी गड़बड़ी कर पेश सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। भारत में YouTube के निदेशक ईशान जॉन चटर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि YouTube के पास बेहतर सामुदायिक दिशा निर्देश हैं जो ये निर्धारित करता है कि मंच पर किस प्रकार की सामग्री की अनुमति है। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बेंगलुरु में ग्रेफाइट इंडिया से 986 करोड़ रुपए में लगभग 1.02 लाख वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। ग्रेफाइट इंडिया ने इसी सप्ताह शेयर बाजार को बताया कि निदेशकों की एक समिति ने ट्रिल की दो अनुषंगी इकाइयों ट्रिल बेंगलुरु रियल एस्टेट 5 लिमिटेड और ट्रिल बेंगलुरु रियल एस्टेट 6 लिमिटेड को 986.13 करोड़ रुपए में बेंगलुरु में 1,02,349.33 वर्ग मीटर जमीन बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा गया कि कंपनी को 7 अगस्त को ये प्रस्ताव मिला और उसी दिन पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। कल्याण ज्वेलर्स का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 33% बढ़कर 144 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 108 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कल्याण ज्वेलर्स ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि तिमाही के दौरान उसका राजस्व सालाना आधार पर 31% बढ़कर 4,376 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,333 करोड़ रुपए था। कंपनी के भारतीय परिचालन का शुद्ध लाभ तिमाही के दौरान 129 करोड़ रुपए रहा, पिछले वर्ष की समान अवधि में 95 करोड़ था। समीक्षाधीन अवधि में पश्चिम एशिया में कंपनी का शुद्ध लाभ 17 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष पहली तिमाही में 14 करोड़ रुपए था। चालू कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर औसतन 14% की वृद्धि हुई, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र में दाम 3% घटे हैं। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। क्रेडाई, क्लोरियर्स इंडिया और लियासिस फोरास की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मजबूत मांग के कारण दूसरी तिमाही में 8 प्रमुख शहरों के घरों की कीमतों में सालाना आधार पर 7% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में घरों के दाम सालाना आधार पर सबसे अधिक 15% बढ़े। इसके बाद दिल्ली NCR में 14% और हैदराबाद में कीमतों में 13% की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में तेजी से 5G नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने अपनी नीति पेश कर दी है। इस नीति में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा बनाने वाली कंपनियों को 5G सेवाओं के विस्तार के लिए जल्द से जल्द सरकारी मंजूरियां देने पर खास जोर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इंदौर में PTI भाषा को बताया, हम चाहते हैं कि प्रदेश में 5G का नेटवर्क तेजी से फैले। इसके लिए हमने 5G नीति पेश की है। इस नीति से 5G सेवाओं का बुनियादी ढांचा विकसित करने में संबंधित कंपनियों को मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी दिल्ली वेरी ने हेवल्स इंडिया को एकीकृत भंडारण और परिवहन समाधान मुहैया कराने के लिए करार किया है। दिल्ली वेरी ने बुधवार को बयान में जानकारी दी। दिल्ली वेरी ने कहा कि उसे हेवल्स इंडिया से पश्चिमी क्षेत्र में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला समाधान का अनुबंध मिला। दिल्ली वेरी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कारोबार अधिकारी संदीप बरासिया ने कहा, हम हेवल्स की आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए एक भरोसेमंद भागीदार बनकर काफी खुश हैं। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में दिल्ली वेरी को 80.5 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।